मेरे प्रिय नौजवान मित्रों नमस्कार। आज 1 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर और इम्पोर्टेंट सिविल सर्विस की दृष्टि से, और वह है हमारे संविधान संशोधन का विधेयक 123 जो कल राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले थोड़े से और दूसरे मुद्दों पर बात कर लेते हैं जो हमारे न्यूज में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। हालांकि न्यूज में कुछ खास दूसरी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, लेकिन जो शब्द आए हैं, जिन चीजों पर चर्चा हो रही है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, न्यूज में आपने एक जीएम फसलों के बारे में सुना होगा, जीएम फसलें, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना। मतलब वो फसलें जिनके बीज के जो जीन्स हैं उसमें परिवर्तित करके उसे ज्यादा आधुनिकतम बनाया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि ज्यादा उपयोगी बनाया जा रहा है। किस मायने में उपयोगी? कि उनकी पैदावार की क्षमता बढ़ जाए, टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो जो कीटनाशक हैं उन सबका मुकाबला कर सके, कम पानी में भी हो सके, तो जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि उनके जीन्स में के चरित्र में परिवर्तित कर दिया जाए। इसे आप इस रूप में कह सकते हैं, ये ठीक है, ये विज्ञान अभी इसको इस रूप में ला रहा है। आप देखेंगे कि मुझे ध्यान आ रहा है कि 1970 के आसपास की स्मृति बहुत अच्छे तरीके से मेरे मस्तिष्क में है कि हमारे यहां धान की खेती होती थी छत्तीसगढ़ में, तो खूब होती थी, और धान जो होते थे वो ऊंचे ऊंचे पौधे होते थे, उनके बालियां भी खूब झबरेदार होती थी। इसके बाद फिर एक टाइचून करके धान आया, उसका नाम ही था टाइचून, कुछ लोग उसको टाइचून भी कहते थे, कुछ लोग कहते थे चीन शब्द कहते थे, गांव में तो देखिए ऐसे ही होता है। तो वो धान क्या था कि उसके पौधे बड़े छोटे होते थे, बहुत ही छोटे पौधे होते थे, जो धान हम लोगों ने देखे थे उससे लगभग आधे कद के पौधे छोटे होते थे, लेकिन उसमें जो धान की बालियां आती थी वो इस तरह से आती थी जैसे कोई झबरेदार कुत्ते की पूंछ हो, खूब बालियां आती थी, धान खूब होता था, मतलब पौधे छोटे लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा। तो वो एक तरीके से चाइना में कहा जाता था कि चाइना से ये बीज आया है, लेकिन बेसिकली वो मॉडिफाइड बीज था, क्योंकि उस समय हम खाद्यान्न के संकट से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, तो सरकार लगातार इस कोशिश में थी कि ज्यादा उत्पादन देने वाली फसलें पैदा की जाए, मतलब बीज इस्तेमाल किया जाए, और हरित क्रांति का बेस भी यही रहा है। आप जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, और 65-66 से शुरुआत हुई थी, और मैं 70 के आसपास की आपसे बात कर रहा हूं। तो मित्रों, अब वो बढ़ते बढ़ते अब जीएम फसलों की तरफ आगे हम पहुंच गए हैं, और भारत में जो कहते हैं कलम लगाना, अगर आपने सुना हो, गांव में कलम लगाते हैं। कलम लगाने का मतलब है कि आपने डंडी काटी किसी पौधे की, जैसे एक गुलाब की डंडी काटी, उसे दूसरे गुलाब में जोड़ दिया कुछ करके, और फिर उस गुलाब का चरित्र बदल जाएगा, मतलब उनके जो जीन्स थे एक दूसरे के जीन्स को आपने क्रॉस कर दिया, क्रॉस ब्रीडिंग है कह लीजिए आप, तो वो जीएम फसलों का एक बेस है। तो इसको लेकर के भारत में लगातार बहस छिड़ी हुई है। इसके बिल्कुल दो वर्ग हैं, एक वर्ग इसके समर्थन में है, दूसरा वर्ग इसके बहुत जबरदस्त विरोध में है। समर्थन में वाले के पास अपने तर्क हैं, इसे बहुत उपयोगी मानते हैं, वो कहते हैं कि इससे कोई जमीन ऊसर नहीं हो रही है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे कीटनाशक का कोई संकट पैदा नहीं, मतलब कीटों का कोई संकट पैदा नहीं होगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, वो अपनी बात कहते हैं, पर्यावरण के लिए भी ठीक है। जबकि इसके विरोधी बिल्कुल इससे विपरीत बात कहते हैं कि हमारी जमीन को ऊसर बना देगा, इससे नए नए कीट पैदा होंगे, फिर पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है, इनके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं। तो मित्रों, जीएम फसलों को लेकर के एक लंबी बहस हमारे देश में चल रही है, और सिविल सर्विस में कुछ साल पहले इस पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इस पर नजर रखें, क्योंकि अभी बहुत जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है, तो आपको इसके बारे में सतर्क रहना होगा, और जैसे ही सरकार का कोई निर्णय आता है आपको उसे तैयार कर लेना चाहिए। तो ये जीएम फसलों के बारे में थोड़ी सी बातें दोस्तों हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने कल टीवी डीडी न्यूज पर देखा होगा, दूसरे चैनल्स में भी वो दिखाया गया था कि कल संसद में बहुत जबरदस्त बहस हुई है, खासकर भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्याओं को लेकर, जिसे इंग्लिश में लिंचिंग कहते हैं, कि भीड़ आती है और किसी की भी हत्या कर देती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बहुत ही जबरदस्त समस्या समझी गई है और उस पर संसद में बहस हुई है। यहां मेरे पास बात करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन ये जो भीड़ द्वारा की जाने वाली जो हत्या है, चूंकि अखबारों में अभी काफी छप रहा है और मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड भी किए हैं, आगे भी कुछ आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट में जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो यही दिया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, देखिए वो राज्य सरकार का विषय है, ये आपको जानना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी जगह है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों पर है। इसीलिए आप देखिए कि राज्यों के भी गृह मंत्री होते हैं और गृह मंत्री पर सही मायने में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का अधिकार की का दायित्व होता है। तो केंद्र सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो राज्य सरकार है वो देखें कि कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे ये बात कही है कि जो भीड़ तंत्र के द्वारा इस तरह से जो हत्याएं की जा रही हैं इन्हें रोका जाना चाहिए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो राज्यों का दायित्व तो है कि वो प्रधानमंत्री के इन विचारों का पालन करें, राइट। इस पर और भी अगर कुछ स्थितियां होंगी मित्रों तो उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसे भी आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चले सिविल सर्विस की दृष्टि से। मुझे फ्रेंड्स कभी कभी ये लगता है कि मैं जब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूं तो आपको लगता होगा कि सर तो रोज ही एक आध दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, तो हम कितने टॉपिक को इम्पोर्टेंट माने। दोस्तों इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, राइट। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आप सोचें कि मैं आपको 30-40 टॉपिक बता दूं और उसमें से 20 टॉपिक आ जाए तो वो तो न भूत न भविष्यति, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा आएंगे उन्हीं में से ही। मैं 100% गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैक्सिमम जो है उन्हीं में से आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस इस तरीके का है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो मैं उस क्राइटेरिया को लेकर आपसे बातें करता हूं। जहां तक आपके प्रिपरेशन का सवाल है तो आप देखिए कि जब आप इनको सिलसिलेवार पढ़ते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में वो बातें मौजूद रहेंगी, मतलब उसको रटने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विस में रटने की पद्धति तो काम ही नहीं आती है। आप केवल उनको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं केवल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए, बीच बीच में दोहराते रहिए, आपकी सिविल सर्विस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते ये सोच करके कि हो सकता है ये ना आए, हो सकता है कि वो ना ही आए, ज्यादातर तो नहीं ही आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है, हमें उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स एक बात मैं आप लोगों से आज और कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इनफैक्ट, कि कल हम लोगों ने पनामा पेपर लीक्स के बारे में बात की थी, आपको ध्यान होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। थोड़ी सी बातें मैंने आपको शेल कंपनी के बारे में बताई थी और ये सब क्या मामला हुआ है इसकी जानकारी दी थी। एक बात मैं उस समय बताना भूल गया था कि देखिए उसका नाम है पनामा पेपर्स लीक्स, मतलब पनामा गेट कह लीजिए, पनामा गेट कांड, गेट भी कहा, पनामा कांड है वो। तो अब जो कंपनी का मैंने नाम बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका नाम पनामा नहीं है, राइट। और जो लीक हुआ है वो कागज है, मतलब इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताया कि उस कंपनी का जो एक यूं कह लीजिए कि एक कानून की कंपनी है वो, है ना, उस कंपनी के कुछ कागज लीक हो गए, यानी कि सर्वर हैक हो गया और इंफॉर्मेशन लीक हो गई, यही हुआ है, जिसको हम पेपर लीक्स कह रहे हैं। तो पनामा क्या मतलब हुआ, पनामा का कोई संबंध नहीं है इससे, या क्या संबंध है, पनामा नाम क्यों पड़ा, मुझे लगा कि यह बात मुझे क्लियर कर देनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है कि जो, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी में इस तरीके से आपको अपने नॉलेज को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, राइट, कि जो पनामा है, रिपब्लिक ऑफ पनामा एक कंट्री है, पनामा गणराज्य एक देश है, उसका जो सबसे प्रमुख शहर है, जो राजधानी भी है, वो है पनामा सिटी, पनामा शहर। ये जो कंपनी है जिसके ये पेपर्स लीक हुए हैं ये पनामा सिटी में है, यानी कि उसका जो हेडक्वार्टर है उस कंपनी का वो पनामा सिटी में है, तो पनामा देश भी है और जहां इसका मुख्यालय है वो पनामा, उसका नाम सिटी है। अब आपको थोड़ा सा पनामा के बारे में, पनामा सिटी के बारे में जान लेना चाहिए, या यूं कह लीजिए पनामा रिपब्लिक के बारे में ही जान लेना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये क्यों पूछ लिया गया, क्योंकि ये अवसर है जब हम उसको थोड़ा सा देख लें। तो आप पनामा पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सेंट्रल अमेरिका में है, मतलब उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका दूसरा महाद्वीप हो गया, उसके बीच में देखिए जोड़ने वाली एक पतली सी जैसे कि एक मुर्गी की गर्दन होती है ना, मुर्गी की गर्दन उस तरीके की है जिसमें मैक्सिको वगैरह देश हैं, तो उसके बिल्कुल आखिरी में पनामा गणराज्य है, पनामा गणराज्य उसको ध्यान से देख लीजिए। फिर आप पाएंगे कि कैरेबियन समुद्र के किनारे है, उसको देख लीजिए। फिर आपने पनामा नहर का भी नाम सुना होगा, हाँ डेफिनेटली पनामा नहर का इससे संबंध है, तो अब आप ये भी देख लीजिए कि पनामा नहर किन किन को जोड़ती है, तो फिर आपको पता लगेगा कि ये मूलतः ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में उसके आपके पैसिफिक ओशन है, तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जो जोड़ने वाली नहर है वो पनामा नहर है। तो मित्रों मुझे लगा कि इस पर भी आपको मुझे थोड़ी बातें बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है, और आज के पब्लिक स्पीक का जो विषय है वो खेल की चुनौतियों पर है मित्रों, और खेल आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको चाहिए कि आप अगर सुन सकें तो पब्लिक स्पीक वाले प्रोग्राम को आज रेडियो पर जरूर सुने। तो दोस्तों अब मैं आता हूं संविधान संशोधन विधेयक पर, जिसकी संख्या है 1, 2, 3, याद करना बहुत सरल है 123, और इस संविधान संशोधन विधेयक के जरिए अब इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्री एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए वो दूसरे तरीके से इम्पॉर्टेंट है। हमारे संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जब अनुच्छेद जोड़े जाते हैं तो एकदम नया नहीं अक्सर जोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस पहले से होते हैं तो उसी प्रोविजंस को हम एक्सटेंड कर देते हैं। दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 330 से लेकर, मैं आपको सिविल सर्विस प्री की तैयारी करने का एक तरीका बता रहा हूं, एक तो हम टुकड़े के रूप में मैं आपको बता दूं कि नया अनुच्छेद जोड़ा गया है 338B और 342A, ये दो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, आप याद कर लीजिए रट लीजिए, लेकिन वो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं हुई, दूसरे कॉम्पिटिशन की तो तैयारी हो सकती है लेकिन सिविल सर्विस की नहीं हुई। सिविल सर्विस की तैयारी कैसे होगी, देखिए सिविल सर्विस की तैयारी ऐसी होगी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 अनुच्छेद तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दो के प्रावधान किए गए हैं, कुछ वर्गों के लिए मतलब सर्टेन क्लासेस के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, राइट। अब बट नेचुरल है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा किसके लिए प्रोविजन किया गया है, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो अब आप जो अनुच्छेद में परिवर्तन करेंगे वो यही करेंगे, यही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे कि हम और क्या जोड़ें। तो देखिए एक जो प्रोविजन जोड़ा गया वो मैंने अभी आपको बताया 338B, इसका मतलब क्या है कि 338 पहले से है, यानी कि 338A पहले से है, उसमें एक और जोड़ दिया गया है, मतलब एडिशन किया गया है 338B। अब आप देखेंगे कि 338 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखें तो उसका टाइटल है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी, राइट, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित के लिए सरकार विशेष अधिकारी का नियुक्ति करेगी, ये 338 में दिया गया ए में, तो सरकार ने 338B उसमें जोड़ दिया, और अब यही प्रोविजन किस पर लागू कर दिया उन्होंने, ओबीसी पर। याद रखिए कि इससे पहले हमारे पास पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये नहीं कि इसके कारण आयोग बनेगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, और इसके बाद ही फिर इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हुई कि क्या क्या किया जाए, तो फिर संसद ने एक एक्ट पारित किया था 1993 को, और उस एक्ट के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बना। याद रखिए कि जो आयोग बना था वो संसद के अधिनियम के तहत बना था, वो संविधान का हिस्सा नहीं था। दोनों में फर्क है। संविधान का जब आप हिस्सा बन जाते हैं तो आपकी जो डिग्निटी है, आपका जो स्टेटस है, वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि संविधान तो बहुत बड़ी चीज है। तो वो सिर्फ एक्ट था, और जब आप संविधान का हिस्सा किसी चीज को बना देते हैं तो उसमें परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। एक्ट में परिवर्तन करना बहुत आसान है, लेकिन संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आप जाकर के जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि सच में वो कितना कठिन है। मतलब इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना आसान एक्ट होता है। तो 1993 में एक एक्ट लाया गया और अगर उसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बना। अब किया यह गया है कि इस संविधान संशोधन के जरिए इस आयोग को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। मतलब अब इसके अधिकार बढ़ गए हैं। अधिकार बढ़ने के तहत मैं आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। बाकी आप अभी अखबारों में इसके बारे में चीजें बातें आएंगी, आप देखिएगा, देख लेंगे। वो ये है कि अब जो आयोग है उसको सिविल कोर्ट के अधिकार दे दिए गए हैं। जो अधिकार सिविल कोर्ट के होते हैं वो वही अधिकार अब आयोग को दे दिए गए हैं ओबीसी के मामले में, राइट? क्या अधिकार है? जैसे मैं आपको एक दो चीज बता दूं कि अगर मान लीजिए किस ओबीसी के प्रति किसी ने अपराध किया है या उनके कल्याण से संबंधित है, योजनाओं को लागू करने से संबंधित है, तो आयोग को कुछ लगता है कि नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है। वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता क्योंकि अब सिविल कोर्ट के पावर्स इसके पास है। वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स कह सकता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, मुझे दिखाने पड़ेंगे, आप मना नहीं कर सकते। चाहे वो इंडिविजुअल हो या संस्था हो, वो मना नहीं कर सकती। वो कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। तो ये सिविल कोर्ट के अधिकार उसको मिल गए हैं जो इससे पहले उसके पास नहीं थे, राइट फ्रेंड्स? मैं बहुत ही मेजर पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको 338B बताया कि 338B जोड़ा गया, 338 हमारे पास पहले से था, उसमें ऐड किया गया 338B। और इसके बाद जो दूसरा ऐड किया गया है फ्रेंड्स, प्री में देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह 342 जोड़ा गया है उसमें। और उसमें क्या जोड़ा गया है? उसमें यह था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कौन कौन लोग आएंगे, उनमें किन किन जाति को शामिल किया जाए, ये 342 में है। उसमें अब ये अधिकार आयोग को दे दिए गए कि वह इस बात का फैसला कर सकता है कि कौन कौन जातियां ओबीसी कैटेगरी में होंगी और कौन कौन सी जातियां ओबीसी कैटेगरी में नहीं होंगी। तो मतलब लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास का फैसला करने का अधिकार भी अब आयोग को मिल जाएगा। तो मित्रों, यह परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों, खासकर समय को देखते हुए मैं समझता हूं कि इतनी ही जानकारी देना अभी फिलहाल पर्याप्त होगा। मित्रों, अब मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट्स ऑफ द डे के तहत एक सूचना देना चाहूंगा, और वो ये है कि अभी विश्व बैंक के कुछ आंकड़े आए हैं और उस आंकड़े में बताया गया है कि भारत में जो 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, जिसमें हम बाल मृत्यु दर कहते हैं, वह 1000 पर 48 है। वर्तमान में 1000 पर 48 है, राइट? जहां तक शिशु मृत्यु दर का सवाल है, मतलब 5 साल से उम्र से पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय जो मृत्यु होती है उसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो जो शिशु मृत्यु दर है वह वर्ल्ड में 49.4 है, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 50 है। भारत की प्रति 1000 पर 38 है, 38-39 दोनों पढ़ने को आपको मिलेगा, लेकिन जो विश्व बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं वो है 38 भी काफी ज्यादा है। अब देखिए कि 5 साल में हम पहुंच जाते हैं 48, 5 साल के भी बच्चा जब होता है तो मृत्यु बच्चों के मरने की संख्या बढ़ जाती है, 1000 में 48 बच्चे नहीं रह पाते। जबकि आप देखेंगे कि दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने इस मृत्यु दर को बेहद घटा दिया है। आप कल्पना करेंगे कि लग्जमबर्ग बिल्कुल छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा देश है, वहां है 1.9, दो समझ लीजिए, केवल दो। अमेरिका की स्थिति 6.5 है, मतलब 6.5 बच्चे केवल 1,000 में 5 साल की उम्र से पहले जिनका निधन होता है। कनाडा तो और अच्छी स्थिति में है, 4.9 यानी कि 5 कह लीजिए। इजराइल जो एक तरह से रेगिस्तानी देश है, वहां जो डेथ है बच्चों की वो 4 है, केवल 4। यहां तक कि चाइना हमसे बेहतर है, 12.2। और सच पूछिए तो चाइना ने बाल मृत्यु दर में कमी लाकर ही, एक तरीके से ही तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि उसने वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सका है। तो मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज आप इसे नोट कर लें, ये आपके बहुत काम आएगा सिविल सर्विस मेंस के लिए तो खासकर। तो दोस्तों, अब काफी वक्त हो चला है, मैं प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी कुछ संख्या में आज प्रेस क्लिपिंग्स कल की तुलना में तो खैर काफी अधिक हैं, वो आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो नौजवान साथियों का स्वागत करने का चरण है। तो मैं आज स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं मनीष कुमार, आप खाकर की नागौर राजस्थान से हैं। भगवान सहाय बैरवा, आप मालपुरा टोंक राजस्थान से हैं। रामचरण बैरवा, आप भी मालपुरा टोंक राजस्थान से ही हैं। अभय सिंह चौहान, आप गढ़ी चुनौती बंथरा यूपी से हैं। आकाश प्रजापति, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। मोहम्मद सरफराज आलम, आप पश्चिम चंपारण्य बेतिया बिहार से हैं। बलदेव सिंह कंवर, आप धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। और सुरभि चौहान, आप पाली राजस्थान से हैं। तो आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।